इंद्र सम्यक दृष्टि है। अभी ये सब तर्क करने वाले जितने लोग यहाँ पर अपना मुंह चला रहे हैं, उनके सम्यक दर्शन का कोई ठिकाना नहीं है इस भव में और आगे के भवों में। लंबी चौड़ी बात करना सरल है, लेकिन थोड़ा सा शांत होकर के शास्त्रों में देखो कि अपन जो गलत समझ रहे हैं और जो दोषारोपण दे रहे हैं उसमें कौन कौन सम्मिलित हो रहा है। अगर ये कहो कि जन्म कल्याणक में नहीं जाना चाहिए मुनियों को, अभी किसी ने एक लेख लिखा था 3-4 साल पहले, उसमें उन्होंने लिखा कि पंच कल्याणक में ही नहीं जाना चाहिए साधुओं को, बोले कोई काम नहीं है साधुओं का वहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। और इतने मतलब ऐसे तरीके से लिखा था उन्होंने कि उसको लेख, वो लेख छप गया पुस्तकों में और उसको पढ़ करके कई लोगों की धारणा बन गई कि हाँ बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने कि साधुओं का क्या काम है वहाँ पर, ये उत्सव तो गृहस्थों के आश्रित है और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गृहस्थों के पैसे लगा करके किया जाता है, तो ऐसे कामों में साधुओं को सम्मिलित नहीं होना चाहिए। 2 महीने बाद उसी पत्रिका का जो अगला अंक आया उसमें उसका जवाब निकला, और जवाब इतना तगड़ा निकला, वो अभी हमारे पास रखा है जवाब, जिसको पढ़ने की इच्छा हो देख लेना। पहले लेख में लिखा था कि सूर्य मंत्र प्रतिष्ठाचार्य ही दे सकते हैं, साधुओं को तो वहां पंच कल्याणक में पैर नहीं रखना चाहिए। अब दूसरे लेख में जो भारत के सबसे बुजुर्ग और पुराने विद्वान हैं संहिता सूरी पंडित नाथूलाल शास्त्री, उन्होंने उस लेख का खंडन कर डाला। और खंडन क्या किया, 4 प्रमाण दिए उन्होंने और बोले कि साधुओं द्वारा ही वो उत्सव संपन्न हो सकता है, बिना साधुओं के तो हो ही नहीं सकता वो कार्यक्रम। अब बताओ क्या करोगे। अब जो प्रमाणिक बात है, जो आगम से दी हुई बात है, उसको सच मानोगे या फिर किसी विद्वान के दिमाग की बात को सच मानोगे। दुनिया की सबसे खतरनाक वस्तु अगर कोई है तो आदमी की खोपड़ी है। इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं। तो ऐसा जो एकांत पकड़ते हैं कि नहीं रत्नत्रय ही पूज्य है बाकी सब कुछ अपूज्य है, उनको विचार करना चाहिए कि फिर गंधोदक को क्यों सिर पर लगाते हो। गंधोदक में है क्या रत्नत्रय, वो तो प्रासुक पानी से या फिर पंचामृत से तैयार हुआ है गंधोदक, अब उसको क्यों लगाओ सिर पर, उसकी वंदना क्यों करते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम क्या जरूरत है, गंधोदक पूज्य कैसे हो गया। और देख लो आप तारंगा जी को नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे, क्या जरूरत है नमस्कार करने की। तारंगा जी से जो लोग मोक्ष गए हैं उनको करो नमस्कार, तारंगा जी में क्यों लगे हो आप, ये तो तारंगा जी जाने की आवश्यकता ही क्या, शिखर जी का क्या महत्व है। गिरनार जी, शिखर जी, चंपापुर, पावापुर, तारंगा आदि जितने सिद्ध क्षेत्र हैं वो क्षेत्र तो जड़ है, पुद्गल है, अजीव है, अजीव को नमस्कार करते हुए आपको डर नहीं लगता, कितना घोर मिथ्यात्व है ये। ऐसा तर्क किन का, हम नहीं बोल रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ रत्नत्रय पूज्य है, उनके लिए प्रश्न है कि सिद्ध क्षेत्र के पास रत्नत्रय है क्या, हाँ या ना में जवाब दो, आगे पीछे तर्क मत करना ज्यादा, जितनी बात पूछ रहे हैं उसका जवाब चाहिए, है या नहीं रत्नत्रय वहां, क्योंकि बात घुमाना आपको आता है वो हमें भी मालूम है कि आता है। तो इसका सीधा जवाब होगा कि सिद्ध क्षेत्र के पास न सम्यक दर्शन है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चरित्र है, क्योंकि आकाश का एक हिस्सा है वो, लोकाकाश का, और वहां पर जो पर्वत या फिर जो भी स्थान है वो स्थान पुद्गल परमाणुओं से रचित है, ठीक है, और पुद्गल द्रव्य अजीव द्रव्य होने के कारण उसका कोई गुणस्थान हो नहीं सकता। हाँ रही स्थावर का एक जीवों की बात, जो वहां पर विद्यमान है तो उनका गुणस्थान एक ही होता है, कौन सा, मिथ्यात्व गुणस्थान, तो उसको नमस्कार करोगे क्या। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सिद्ध क्षेत्र के पास न सम्यक दर्शन है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चरित्र है। तो जिनका ऐसा दुराग्रह है कि रत्नत्रय ही पूज्य होता है, उनके लिए सिद्ध क्षेत्र अपूज्य हुआ कि नहीं, हो गया उन्हीं के कथन के अनुसार हो गया अपूज्य हो गया, तो बताओ सिद्ध क्षेत्र अपूज्य हो सकता है क्या जैन आगम में, नहीं हो सकता, तो फिर उनको विचार में संशोधन करने की जरूरत है कि नहीं। जो लोग ऐसा दुराग्रह करते हैं उनको विचारना चाहिए कि नहीं कि हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। अगर वो स्वयं विचार कर ले ठंडे दिमाग से तो अपने आप संशोधन हो जाता है, और अगर जिद्दी बने रहे तो जिद्दी सो गया काम से। इसलिए ऐसा दुराग्रह न करते हुए फिर महाराज की चरण रज। रज का कौन सा गुणस्थान हो सकता है? मान लो वो कोमल पृथ्वी का एक जीव हो तो भी पहला ही गुणस्थान होगा मिथ्या, तो फिर उसको क्यों प्रणाम किया जाए? गुरु की चरण रज माथे पर क्यों लगाया इंद्र? इंद्र तो सम्यक दृष्टि और वो रज तो मिथ्या दृष्टि, और मान लो अजीव है तो फिर अचित है तो अजीव होगी, तो अजीव की आराधना उसकी विनय करना कहां तक उचित है? तो ये विनय और अविनय के प्रकरण में जो वर्तमान में खींचातानी चल रही है वो सिर्फ हठाग्रह का परिणाम है। अगर थोड़ा व्यापक दृष्टि से विचार करो तो फिर दोनों बातें समझ में आ जाएगी। इंद्र बालक का अभिषेक करता है या द्रव्य जिन का, और उसी इंद्र ने सुकमाल स्वामी के उस शरीर की जो पूजा की, सुकमाल स्वामी तो वहां चले गए सर्वार्थ सिद्धि में, अहम इंद्र पद को प्राप्त हो गए, शरीर की जो पूजा की मुनिराज के क्यों की? क्योंकि वो शरीर रत्नत्रय से पवित्र बन चुका। वो अपवित्र कब तक था? स्वभाव से तो अपवित्र था, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन इंद्र पूजा कर रहा है इसका मतलब कोई ऐसी खास बात होनी चाहिए उस शरीर में। और जिनेंद्र भगवान भी जब मोक्ष चले जाते हैं तो उनके शरीर की भी पूजा की जाती है, उस शरीर को पालकी में रखकर। अब ये जो नख केश वाला उल्लेख है ये कहीं पर है, लेकिन आदि पुराण में ये बात है कि उस शरीर को इंद्र लोग पालकी पर ले जाते हैं और फिर उसको अग्नि संस्कार के माध्यम से, अग्नि कुमार इंद्र अपने मुकुट से निकलने वाली अग्नि से संस्कारित करते हैं और निर्वाण कल्याणक की पूजा करते हैं, उस शरीर को बड़े आदर के साथ अंतिम संस्कार देते हैं। उस आदर की क्या आवश्यकता है? क्योंकि भगवान तो मोक्ष चलेगा, अगर मात्र भगवान पूज्य होते तो फिर इस शरीर की इंद्र लोगों को क्या चिंता होती? दो उल्लेख बता रहा, दोनों बातें कही ना हमने, एक तो क्या है कि नख केश रह जाए और फिर बाकी शरीर विलीन हो जाए, और फिर एक जो नाम भी लिया हमने आदि पुराण का कि उसमें पालकी में उस शरीर को विराजमान करके ले गए। पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति में लिखा है, अग्निन्द्राज जिन देहम मुकुटानल सुरभि गो शीर्ष ही। अग्नि कुमार जाति के जो इंद्र है वो अपने मुकुट की अग्नि से उनके शरीर, जिन देहम ये शब्द दिया है, जिनेन्द्र भगवान के देह को अर्थात शरीर को अग्नि संस्कार देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिस पर अपने को ख्याल, गुरु के आसन पर क्यों नहीं बैठा जाता बताइए? कभी भी शिष्य या भक्त या कोई भी छोटा व्यक्ति गुरु जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन पर नहीं बैठता, उसका कारण क्या? अभी तो नहीं बैठे गुरुजी तो अपने कहीं किसी दूसरे स्थान पर है, ये तो खाली पड़ा है पटा, इस पाटे के ऊपर क्यों नहीं बैठ सकता कोई? ये विनय है। किसकी विनय? उनके आसन की विनय। जब चरण रज भी विनय के लिए योग्य है तो फिर उनका आसन तो निश्चित ही विनय के योग्य होगा। ऐसी कितनी सारी बातें हैं, अगर आगम का समीचीन अध्ययन करें तो फिर इन बातों को लेकर विवाद करने की तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी इस अनमोल मनुष्य जीवन में। ये तो जिनके पास फालतू टाइम होता है वो ऐसे तर्क वितर्क करके अपना दिमाग तो खराब करते ही हैं, और दूसरे जो उनके श्रोता होते हैं और फिर जो उनके समर्थक होते हैं उनको भी आर्त रौद्र ध्यान कराते हैं और फिर कई प्रकार से विवाद खड़े कर देते हैं। वास्तव में शरीर अशुचि है, इसका चिंतन इसलिए करना है कि मुझे शरीर के प्रति राग न हो। लेकिन जहां शरीर का आदर करने की बात आएगी, जहां गुरुओं की सेवा करने की बात आएगी, वहां पर उनका शरीर भले स्वभाव से अशुचि हो पर मैं कभी घृणा नहीं करने वाला। अगर घृणा करता हूं तो मैं दोषी हूं। क्यों दोषी हूं? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में एक सूत्र है। कौन सा सूत्र? 5 दोष गिनाए हैं सम्यक दृष्टि के। व्रती के नहीं, सम्यक दृष्टि के। कौन से पांच दोष? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा। आगे का छोड़ो, ये विचिकित्सा क्या वस्तु है? साधुओं के शरीर को देखकर अपने अंदर ग्लानि का भाव लाना विचिकित्सा है। ग्लानि सेवा में बाधक है। सेवा करते समय अगर आप नाक से कोड़ोगे, माँ किस प्रकार अपने बच्चे की सेवा करती है, कितनी अशुद्धि करता है बच्चा, लेकिन फिर भी माँ बिल्कुल उससे घृणा ना करते हुए सारी देखरेख करती है। इसी प्रकार भक्त भी गुरु की ऐसी सेवा करता है कि वो लॉटरी खुलने पर भी, अपार संपत्ति प्राप्त करने पर भी कोई व्यक्ति उस भावना से सेवा नहीं कर सकता। जो भक्ति के कारण वो शिष्य या भक्त गुरु की सेवा करता है, तो इसलिए कहीं भी किसी भी क्रिया में या किसी भी बात में खींचातानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपनी दृष्टि को थोड़ा बड़ा बनाओ। बड़ा बनाने से क्या होगा कि और भी चीजें दिखेंगी। आप इतने में देख रहे हैं तो इतने में देखने से वो उतना ही दिखेगा। व्यापक दृष्टि रखने से बहुत सारी चीजें समझ में आती है और फिर कोई झगड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार ये अशुचित्वानुप्रेक्षा का यहाँ पर वर्णन आज समाप्त होता है।